हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार कार्यक्रम का आज का शीर्षक है पर्व और त्योहारों का वाहक है संचार। साथियों, केवल हमारे देश भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में पर्व, त्योहार, उत्सव, मेले, समारोह ये सब मनाए जाते हैं और इसी वजह से मनुष्य के जीवन में इन सभी की रंगत या ऊब हताशा और तनाव का माहौल नहीं आने देती, किसी को ऊबने नहीं देती जीवन से, निराश नहीं करती, क्योंकि इनकी रंगत ही कुछ ऐसी होती। अब अगर पर्व की ही बात करें तो हर पर्व के उत्सव का एक एक पल जीवन में रंगीनियत के साथ साथ एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर देता है। वास्तव में ये सब संचार के सबसे सशक्त वाहक हैं जो युग युगों से स्नेह और भाईचारा और एकता का प्रसार करते रहे। पर्वों, त्योहारों तथा उसके उपलक्ष्य में मनाए जाते उत्सवों की इस कड़ी से विश्व के सारे देश एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते हैं। हर नागरिकों को नागरिक से जोड़ने, हर मन को मन और हृदय से जोड़ने वाली ये कड़ियां जीवन में परस्पर सद्भाव और समन्वयता का रंग भर देती हैं, ताकि पूरे संसार में सुख, शांति, खुशहाली, प्रेम और सामंजस्य का रंग संचारित होता रहे और संचार के साथ साथ फैलता भी रहे। मित्रों, हमारा भारत एक विशाल देश है, हमारी बहुरंगी संस्कृति है, पर्व त्योहार मनाने की बहुरंगी परंपराएं हैं और इसी सिलसिले में हमारे मध्य प्रदेश का जो ये मालवांचल है इसमें भी अनेक तीज त्योहार मनाए जाते हैं और कुछ त्योहार ऐसे हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं एक साथ। तो चलिए मालवा की ही बात करें। यहां लगभग पूरे वर्ष भर अनेक छोटे बड़े त्योहार, पर्व और उनसे संबद्ध उत्सव आदि को बड़ी ही श्रद्धा, उल्लास तथा आनंदपूर्वक मनाए जाने की अपनी एक अनूठी, एक निराली संस्कृति और परंपरा सदियों से रही है। गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से बिल्कुल सटा हुआ हमारा ये मालव प्रदेश इन दोनों राज्यों की संस्कृति से बहुलता से प्रभावित है। बहुत असर है इन दोनों राज्यों का इस अंचल में। मालवी बोली में भी गुजरात, राजस्थान की बोली विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है और यही सब मिलकर एक विचित्र सा, एक अद्भुत सामंजस्य का संचार करते हैं। मालवा में मुश्किल से एक दो महीनों को छोड़कर अमूमन हर महीने त्योहारों और उनसे जुड़े हर्ष उल्लास का माहौल छाया ही रहता है। इन त्योहारों के पीछे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्व तो होता ही है, साथ ही इनको मनाए जाने के पीछे कोई न कोई धार्मिक प्रसंग और उद्देश्य भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वास्तव में यही सब तो एक होकर मिलजुल कर रहने की एक पीठिका निर्मित करते हैं, एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब देखिए, मौसम की बात करें तो हर मौसम और उसमें आने वाले त्योहारों में परंपरा के अनुसार पकवान यानी कुछ मीठा बनाने का रिवाज होता है। जैसे गुड़ी पड़वा पर्व पर पूरण पोली बनाई जाती है। अब ये पूरण पोली मूलतः महाराष्ट्र का पकवान है। इसी तरह रंग पंचमी के बाद यानी होली के बाद रंग पंचमी आती है और उसके बाद सील सप्तमी का दिन आता है, उस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। बड़ी चौथ यानी चतुर्थी पर लड्डू बनते हैं तो नागपंचमी के दिन दाल बाटी बनती है, यानी रोटी किसी भी लोहे या पीतल आदि के बर्तन में बनाना बिल्कुल मना है, इसलिए कंडे जलाकर बाटी बनाने का रिवाज है और ये सदियों पुरानी परंपरा है। इसके बाद आती है तेजादशमी और फिर दक्षा पूजन यानी दशमी तिथि। पौराणिक कथा के अनुसार ये पर्व राजा नल और रानी दमयंती की स्मृति में मनाते हैं, जिसकी कड़ी पंजाब से जुड़ी है। और श्रोताओं, इन सब के बाद आते हैं चैत्र मास के पर्व, जैसे रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर स्वामी जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये सब त्योहार आते हैं जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो ये सब हमारी राष्ट्रीय एकता और मेल मिलाप की भावनाओं का संचार ही तो है। चैत्र महीने के बाद फिर वैसाख आता है। वैसाख में आती है अक्षय तृतीया। हमारे मालवा में इसे आखा तीज कहते हैं। ये दिन बहुत खास होता है, इसलिए कि बगैर किसी मुहूर्त के देखे इस शुभ दिन को विवाह किया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे विवाह होते हैं इस अक्षय तृतीया के दिन। इसके बाद जेठ महीना आता है, उसमें गंगा दशमी और वट सावित्री का त्योहार आता है। फिर आता है आषाढ़, जो गर्मी की तपन को शीतल बूंदों से शांत करता है। वर्षा का आगमन होता है और इसी महीने की एकादशी यानी ग्यारस, जिसे देव शयनी ग्यारस भी कहते हैं, वो आती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से देवता विश्राम करते हैं। इसी दिन से रामायण पाठ नियमित रूप से 4 महीनों तक चलता है। इसे ही चातुर्मास कहा जाता है। इधर किसान खेतों में नवान्न के बीज बोना शुरू कर देते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं बीज के फलने फूलने की। और ये प्रथा केवल मालवा की ही नहीं, अपितु देश के अधिकाधिक भूभागों में सदियों से जारी है और एक दूसरे को जोड़कर रखती है। श्रावण मास, जी हां, श्रावण मास तो आनंद का मास है। बड़ी धीमी धीमी मीठी मीठी वर्षा की हल्की हल्की नन्नी नन्नी बूंदें गिरती हैं। और इस महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार यानी राखी का त्यौहार आता है। और अगला महीना यानी भादो का जो महीना होता है, उसमें वर्षा थोड़ी सी तीव्र हो जाती है, झड़ी लगती है बारिश की, नदी नाले उफान पर आ जाते और जनमानस इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। भादो में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, गणपति की स्थापना और 10 दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक जब गणेश विसर्जन होता है, आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत नाटक ये सब होते हैं। 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। वर्षा का समापन होता है, फिर आता है क्वार मास। इसमें आरंभ होता है 15 दिवसीय श्राद्ध पक्ष, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। इसके बाद आरंभ होता है नवरात्रि पर्व। जी हां, 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना नृत्य भक्ति संगीत से की जाती है। मूल रूप से गुजरात में इस पर्व का एक अलग ही आनंद है। कहा जाता है कि वहीं से ये पर्व पूरे देश में फैला और वहां का जो एक माहौल है वो हमें आत्मविभोर कर देता है। तो ऐसे भी हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। नवरात्रि के बाद फिर विजयादशमी यानी कि दशहरा। रावण दहन के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश लेकर दशहरा मनाते हैं। और इसके ठीक दिन बाद सर्वव्यापी आलोक का पर्व दीपावली, जो हर घर और जन के मन में प्रकाश की स्वर्णिम किरणें बिखेर देता है। और श्रोताओं, हर वर्ष के अंतिम महीने यानी दिसंबर में आता है क्रिसमस, प्रभु यीशु के जन्म का पावन दिवस, जो समस्त मानव जगत में और विशेषकर पीड़ितों में नवजीवन, सुख और शांति का संदेश संचारित करता है। तो यही है हमारे पर्व और त्योहारों का महत्व। और इनका उद्देश्य है एक कड़ी से दूसरी कड़ी को सदाशयता के संचार के साथ जोड़कर रखना। नमस्कार।